नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा फिर शुरू होगी। राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का 5 सूत्री सिद्धांत सामने रखा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारत ने 6 वर्षों में 12,000 लाख करोड़ रुपए के 65,000 करोड़ डिजिटल लेन देन दर्ज किए। और शतरंज में दिव्या देशमुख फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज फिर ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक अभियान पर कल चर्चा आरंभ की। चर्चा में भाग लेते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए नई शुरुआत का संकेत है।
The challenge of cross-border terrorism continues, but Operation Sindoor marks a new phase. There is now a new normal. The new normal has 5 points. 1. Terrorists will not be treated as proxies. 2. Cross-border terrorism will get an appropriate response. 3. Terror and talks are not possible together. There will only be talks on terror. 4. Not yielding to nuclear blackmail. And finally, terror and good neighborliness cannot coexist. Blood and water cannot flow together. This is our position.
विदेश मंत्री ने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की बाहरी मध्यस्थता का पूरी तरह खंडन किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी।
I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet.
डॉक्टर जयशंकर ने इस संबंध में 26 नवंबर 2011 के मुंबई हमलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी गुट घोषित किया है, जो भारतीय कूटनीति की सफलता है।
What we tried to do was to create a narrative, prepare the diplomacy for the launch of Operation Sindoor. And the result of that diplomacy, there are 193 members of the United Nations. Only 3 apart from Pakistan opposed Operation Sindoor.
इससे पहले सदन में चर्चा शुरू करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना हमले के जवाब में भारत ने बिना किसी उकसावे वाली नपी तुली और पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को निशाना बनाने की कार्रवाई की।
हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट को प्रिसीजन के साथ सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्करे तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित हैं।
रक्षा मंत्री ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्य पूछ रहे हैं कि भारत के कितने विमान मार गिराए गए, जो सच्ची राष्ट्रीय भावनाओं के विपरीत है।
कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गए। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ।
चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए।
देश ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। आज आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है, वहाँ पे CRPF है, BSF है, CISF है और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये कैसा बंदोबस्त?
राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर 16 घंटे चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषणों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन भाषणों को उत्कृष्ट और गहरी सूझबूझ भरा बताया। देश में वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 के बीच 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन देन किए गए, जिनकी राशि 12,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कल लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार विशेष रूप से Tier 2 और Tier 3 शहरों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, फिनटेक कंपनियों, बैंकों और राज्य सरकारों सहित हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में कल श्रीनगर जिले के हरवान क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके लिदवास के जंगलों में हुई। कश्मीर के पुलिस महानिदेशक वी के बिरदी ने संवाददाताओं को बताया कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 आतंकियों की पहचान की जा रही है।
It was an operation which is quite prolonged for a long time. That is still continuing, but in which Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. As per the interior reports, 3 bodies have been observed and seems to be neutralized.
सेना के उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में त्वरित कार्रवाई और आतंकियों के खात्मे के लिए श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आज 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के विद्यालयों को ज्ञान प्राप्त करने के ऐसे स्थानों में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना है जहां शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तकों, अंकों या रटने तक सीमित न रहे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पिछले 5 वर्ष में इस नीति ने भारत में अधिक समावेशी, शिक्षार्थी केंद्रित और भविष्य अनुरूप शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव सार्थक सुधारों के माध्यम से सीखने के हर स्तर पर दिखाई दे रहा है। निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसी पहलों से लगभग 9 लाख विद्यालयों के 4 करोड़ से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वहीं भारतीय सांकेतिक भाषा पर 1000 से ज्यादा वीडियो और टॉकिंग बुक्स विकसित की गई है। 5+3+3+4 संरचना और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 अनुभवात्मक और योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है। CBSE बोर्ड परीक्षाओं में अब 50% योग्यता आधारित प्रश्न शामिल हैं और वहीं विद्यार्थी विषय का चुनाव 2 स्तरों पर कर सकते हैं। निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 4 लाख से ज्यादा शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। बाल वाटिका, जादुई पिटारा और प्रशस्त ऐप जैसी अन्य पहलों ने बहुभाषी, समावेशी और समग्र शिक्षा को अधिक बढ़ावा दिया है। चाहे दिव्यांग और छात्राओं के लिए या भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए या क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसी नीति का निर्माण कर रही है जहां प्रत्येक शिक्षार्थी को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बिहार में वैशाली जिले के वैशाली गढ़ में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का आज उद्घाटन किया जाएगा। इसका निर्माण 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 72 एकड़ भूमि पर किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर से श्रद्धालुओं का 27वां जत्था आज सुबह कश्मीर घाटी में पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। 61 वाहनों के इस जत्थे में 1490 तीर्थयात्री शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरल, माहे और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भी दिन भर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश में वर्षा जारी है।
राज्य के 30 जिलों में कल से भारी बारिश हो रही है। नीमच जिले के सिंगोली में सर्वाधिक 10.5 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 21 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। सभी प्रमुख नदियों पर बने बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है जिससे नदी किनारे के गाँव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गरज चमक और तेज हवा के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी दिल्ली में वसंत विहार सहित कई इलाकों में कल रात तेज वर्षा के साथ बाद जगह जगह पानी भर गया। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर फिर हमला करते हैं तो उन्हें और भी निर्णायक तरीके से जवाब दिया जाएगा। ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कल की टिप्पणी के जवाब में आई है, जिन्होंने पिछले महीने अमेरिकी हमलों के बाद परमाणु गतिविधियों को फिर से शुरू करने पर इस्लामी गणराज्य के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की धमकी दी थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्टर टर्क ने चेताया है कि ईरान में मृत्युदंड खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है और इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। एक बयान में श्री टर्क ने मृत्युदंड दिए जाने पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि असहमति की आवाज को दबाकर निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को अनदेखा किया जा रहा है। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने चेतावनी दी है कि इसराइल फलस्तीन संघर्ष नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। कल न्यूयॉर्क में शांति सम्मेलन में उन्होंने संघर्ष के बीच तात्कालिक और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गुतेरस ने कहा कि दोनों देशों के बीच समाधान का रास्ता टूट रहा है और इसे जल्द ही बदलना होगा। दिव्या देशमुख फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। एक रिपोर्ट।
जॉर्जिया में कल दिव्या ने भारत की ही कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में हराया। मैच के दूसरे टाई ब्रेक में दिव्या डेढ़ के मुकाबले ढाई अंक से विजयी रही। फाइनल की दोनों बाजी ड्रॉ होने के बाद पहला टाई ब्रेक भी ड्रॉ रहा था, लेकिन दूसरे टाई ब्रेक के रैपिड मैच में काले मोहरों के साथ खेलते हुए दिव्या ने बाजी मारी। 19 वर्षीय दिव्या की इस जीत के बाद वे भावुक नजर आईं।
I think it was fate me getting the grandmaster title this way because before this I didn't even have one home and now Before this tournament, I was thinking, oh, where can I get my name? And now I'm a grandmaster. So.
इस जीत के साथ ही दिव्या ग्रैंडमास्टर भी बन गई हैं। इसके साथ ही हम्पी और दिव्या ने अगले वर्ष के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी को बधाई दी है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
धन्यवाद विशाल। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में विशेष चर्चा आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान वीर अर्जुन में है, किसी दबाव में नहीं रोका गया ऑपरेशन सिंदूर। राजस्थान पत्रिका ने रक्षा मंत्री के शब्दों को दिया है। विपक्ष ने कभी नहीं पूछा कि हमने शत्रु के कितने विमान गिराए। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सहित तीन आतंकियों के मारे जाने को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। जनसत्ता लिखता है, सेना के शीर्ष पैरा कमांडो के ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले का मुख्य साजिशकर्ता सुलेमान उर्फ आसिफ मार गिराया गया। बिहार में मतदाता सूची के प्रारूप पर रोक लगाने से सर्वोच्च न्यायालय के इनकार को अमर उजाला ने सुर्खी बनाया है। न्यायालय ने आयोग से कहा, मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को स्वीकार करना जारी रखें। 5 साल में 50% बढ़ेगा कृषि निर्यात, दैनिक जागरण ने वाणिज्य मंत्रालय के एक अनुमान के हवाले से लिखा है। ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते से वर्ष 2030 तक $1.5 अरब हो जाएगा भारत का कृषि निर्यात।
धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा फिर शुरू होगी। राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का 5 सूत्री सिद्धांत सामने रखा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और शतरंज में दिव्या देशमुख फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।